सुख यहाँ लेक्चर नंबर 9। ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम तथात्मने नमः प्रणमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सहजानंद जी रचित यह सुख यहाँ नामक पुस्तक का प्रथम भाग चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 33 पर, 33 नीचे का पैराग्राफ यहाँ से पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ जो पहले भाग की जो हमने श्लोक नंबर 11 पढ़ा था कि मैं वंश रहित हूँ परंतु चेतना ही मेरा वंश है, ग्रह रहित मैं हूँ चेतना ही मेरा घर है, इस तरह से ये बात चली थी। उसी के प्रवचन में अभी हम आगे पढ़ रहे हैं, जहां से कोई निकाल न सके उसे घर कहते हैं। ये ईंटों के घर क्या घर है? हम कहते हैं वास्तु, जहां हमारा वसना है वो वास्तु। इनमें रहने का कुछ ठेका है क्या? एक साधु जा रहा था, उसे आगे एक हवेली मिली, बाहर उसका चौकीदार बैठा हुआ था। साधु ने पूछा, यह धर्मशाला किसकी है? चौकीदार बोला, महाराज यह धर्मशाला नहीं है। साधु बोला, हम यह नहीं पूछते, हम यह पूछते हैं यह धर्मशाला किसकी है। यह सब वातावरण देख नौकर मालिक के पास भागा। मालिक बोला कि महाराज यदि आपको धर्मशाला में जाना है तो हम नौकर को साथ भेज देते हैं, वह बता देगा यह धर्मशाला किसकी है। मालिक ने दिमाग से सोचा, इसमें कुछ न कुछ राज अवश्य है, बिना मतलब के यह नहीं कह रहा है, यह वह बता देगा के बाद ये फुल स्टॉप चाहिए। उसने फिर पूछा, यह धर्मशाला किसकी है? सेठ ने गद्दी के पास बुलाया और कहा, महाराज यह धर्मशाला नहीं है, मेरी हवेली है। साधु ने पूछा, इसे किसने बनवाया था? सेठ बोला, महाराज मेरे दादा ने इसको बनवाना शुरू किया था, फिर वे तो पूरी न बनवा सके, मेरे पिताजी ने इसे पूरा कराया। साधु बोला, पिताजी फिर कितने दिन इसमें रहे? सेठ बोला कि 3 वर्ष रह सके, फिर गुजर गए। साधु बोला कि तुम कितने दिन इसमें रहोगे? सेठ सहम गया। साधु बोला, जिसे तू हवेली समझ रहा है इसके छोड़ने के समय तुझे 1 मिनट भी ठहरने की इजाजत न मिलेगी। हाँ, उस धर्मशाला में भले ही इजाजत मिल जावे मंत्री से कहकर, फिर यह धर्मशाला ही तो है। इस प्राणी को ऐसा मोह लगा है, ऐसे मोह जाल में फंसा हुआ है कि यह मेरा है, यह उसका आदि ही रट लगाए हुए यह दुख भोग रहा है। सोचो तो जब पूर्व हो का हमें कुछ ज्ञान नहीं कि हम कहाँ थे, कौन हमारे माता पिता थे, तब इस जन्म की ही अगले भव में क्या याद रहेगी। अतः मैं अपने चेतन के घर को पहचान कर अपनी आत्मा के कल्याण के मार्ग पर लगूं। सदा यही भावना भानी चाहिए, विषय कषाय आदि का जल जिसमें नहीं चूता, उस निज चेतना गृह को छोड़कर अन्यत्र संसार की इस बरसात में कहाँ घूमूं। अतः इससे बचने के लिए चेतना रूपी घर में रहकर सुखी होऊं। यानी मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, ये अलग अलग शब्दों में अलग अलग दृष्टांतों से बता रहे। अब 12 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। निर्मित्रश्चेतना मित्रो निर्गुरुश्चेतना गुरु चेतनान्यन्यमे किंचि
स्वस्याम स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं।
निर्मित्र और निर्गुरु कहा, मैं मित्र रहित हूँ तथा चेतना ही है मित्र जिसका, ऐसा हूँ। मैं गुरु रहित हूँ, चेतना ही है गुरु जिसका, ऐसा हूँ। पहले भी ये बात आई थी ना समाधि तंत्र में, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, आप आती थी ना उसमें। हाँ, चेतना से अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं है, अतः चैतन्य स्वरूप में ठहरता हुआ मैं अपने में अपने लिए स्वयं सुखी हूँ। मेरा इस जगत में कोई नहीं, लोक में जो मित्र की तरह दिखते हैं वे केवल विषय भोगों में ही साथी है, वास्तव में कोई मित्र नहीं। घर कुटुंब में भी जिन्हें हम अपना समझते हैं उनसे अच्छे भगवान है या वे पुत्र स्त्री आदि, जिसने अपने सहज स्वरूप को पहचान लिया वे भगवान के अतिरिक्त, अपने सहज स्वभाव के अतिरिक्त किसी को अपना नहीं समझते। ये यहाँ बीच में कॉमा, ये प्रश्न चिन्ह चाहिए था ना। घर कुटुंब में भी जिन्हें हम अपना समझते हैं उनसे अच्छे भगवान है या वे स्त्री पुत्र आदि, यहाँ वाक्य पूरा और प्रश्न चिन्ह करना आदि के बाद, और बाद में ये पूरा पढ़ना कि जिसने अपने सहज स्वरूप को पहचान लिया वे भगवान के अतिरिक्त, अपने सहज स्वभाव के अतिरिक्त किसी को अपना नहीं समझते। और मोही जीव बाह्य पदार्थों को ही अपना समझता है, यानी अपने को ही भगवान का ना, अपने चैतन्य स्वभाव को ही भगवान कहा है, उसके अतिरिक्त अपना कुछ नहीं। पृष्ठ संख्या 34, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से तीसरी लाइन। किंतु वास्तविकता यही है कि अपना यदि कुछ है तो वह है चेतना, अन्य कुछ नहीं। उनसे घर के पुत्रादिकों से तो पड़ोसी अच्छे हैं, जो ज्ञान की बात बताते हैं, सिखाते हैं और ज्ञान में लगने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मोही जन तो अंधेरे में ही पड़े रहेंगे, उनसे अच्छे तो वे हैं जो हित का उपदेश देते हैं। और वे तो किसी को बुरे लगते हैं ना, ये आपका प्रवचन नहीं सुनना है हमको, बार बार वही बातें करते हैं। और अभी अभी अपनी बात हो रही थी ना कि तो हम कैसे भाग्यवान है कि गुरुदेव ने ऐसी बातें सरल करके समझाई है और वो समझने जैसे अपनी योग्यता भी है। ये ज्ञानी उपदेशक संसार का अंत करने में कारण होंगे और ये राग के कारणभूत अंधेरे में रखने के सिवाय कर ही क्या सकते हैं। यानी कुटुंबी जन है या जिनके प्रति अपना मोह है वो तो राग के कारणभूत है और वो संसार रूपी भव भ्रमण ही कराते रहेंगे। और जो ज्ञानी उपदेश है, उपदेशक, वो संसार का अंत करने में कारण यानी निमित्त हो गए। अतः यही सोचो कि मेरा कोई मित्र नहीं, यदि है तो चेतना, चेतना स्वभाव ही मेरा मित्र है। इसी प्रकार मेरा कोई गुरु भी नहीं है, गुरु तो सूर्य की तरह होते हैं, सूर्य का काम है प्रकाश कर देना यानी मार्ग बता देना, मार्ग दिखला देना, किंतु जब हम चलेंगे तभी तो वहाँ पहुँच सकते हैं, चलना तो मुझे ही पड़ेगा। इसी प्रकार गुरु मार्ग बताने वाले ही है, सही ज्ञान देने वाले हैं, किंतु यदि मैं उस पर आचरण करूँगा तभी तो मेरा हित होगा। अतः वे मार्ग बताने में कारण तो हैं, उसमें सूझ बनाओ तो कल्याण है, उस पर चलना तो तुम्हें ही है, अतः मेरा गुरु मैं स्वयं हूँ। ये पंडित आशाधर जी का था, उसमें भी आई थी बात ये अनगार और सागर धर्ममृत, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। और अभी समाधि तंत्र में भी यही बात आई थी, तुम्हारे गुरु तुम हो, मेरा स्वभाव ही मेरा गुरु है, चेतना को छोड़कर अन्य मेरा कुछ नहीं। जिस मोह में फंसे हुए हम सोचते हैं कि अमुक बहुत अच्छा है, वह सब विपदा का कारण है। विपदा का कारण होता है अज्ञान, यानी अज्ञान ही विपदा का कारण है। और हम तो बाह्य पदार्थों को विपदा समझते हैं। जो हित की अभिलाषा करे, हित की बात बतावे, हित से मार्ग में चला देवे, उसे गुरु कहते हैं।
तो स्वयं भी अभिलाषा करते
हाँ, वास्तव में कोई न मेरा हित चाह सकता, न अभीष्ट का मार्ग बता सकता, न अभिलाषा करा सकता। जो कुछ करूंगा मैं ही करूंगा। कोई यदि करुणा करेगा उसका उसमें ही परिणमन होगा, मेरा कुछ नहीं। सब कुछ करना तो हमें ही पड़ेगा। अतः वस्तुतः मेरा कोई गुरु नहीं। वास्तव में, वस्तुतः ने वास्तव में देखा जाए, यथार्थ में कोई किसी का गुरु नहीं है। कोई दूसरे में कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं ही अपना गुरु हुआ, तुम्हारे गुरु तुम स्वयं हो। मेरा सब कुछ मैं ही हूँ। उस आत्म तत्व की श्रद्धा करो, दृष्टि लगाओ, तो ये सब विपदाएं नष्ट हो जाएगी। जन्म जरा मरण के चक्कर मिट जाएंगे। अन्यथा दुनिया में बने दूसरों के द्वारा तोड़े गए, फोड़े गए, खोदे गए, गीला किया गया, क्या कष्ट नहीं पाए। हम जल भी बने, उसके दुख देखो। यानी जल कायिक हो गए ना हम, इसलिए हम जल भी हो गए ना। हम जल कायिक में भी जन्म लिया था। गर्म किया गया, ठंडा किया गया, कीचड़ में मिलाया गया, बहाए गए, ये दुख हमने ही तो सहन किए। अग्नि बनकर उसके दुख देखो, जलाया गया, पीटा गया। अग्नि को कोई पीटता है क्या? अग्नि को नहीं पीटते कोई। वो तो अग्नि सहे घन घात, लोह की संगति भारी, बताते ना। तो पीटा गया आदि यह सब दुख भी हमने ही सहन किए। हवा बनकर भी उसके दुख, टायर में बंद किया गया, पंखे से हिलाया गया, आदि भी दुख हमने ही सहन किए। तथा कीड़े मकोड़ों में रहकर भी हमने ही दुख सहन किए। आजकल लोग जूतों में नाल लगवाते हैं, उनमें कितने कीड़े मकोड़े नहीं मरते, बहुत मरते हैं, कुचल दिए जाते हैं। वनस्पति के दुख कुल्हाड़ी से काटने आदि के भी हमने ही सहन किए। तिर्यंच के दुखों को भी, नरक के देवों के दुखों को भी हमने ही अपने अज्ञान के द्वारा सहन किया। यहाँ तो लगता है कि देव तो सुखी हो गए ना, कुछ कमाना धमाना नहीं है, सब कुछ मिल रहा है आराम से, हाँ? कहते वो भी दुख हमने सहन किए। कोई तो चूहे को बंद कर देते हैं, फिर बिल्ली को सामने खड़ी कर खोलते हैं, वो उसको खा जाती है। हिंसक लोग रस्सी से उसकी पूंछ बांध देते हैं और अग्नि पर लटका देते हैं, वही तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल जाते हैं। भैया, ये दुख भी तो हमने ही उस पर्यायों को धारण कर सहन किए। अंडे मुर्गे मछलियों का तो कहना ही क्या है, कितने कितने दुख सहन करने पड़ते हैं। वे भी दुख अज्ञान के कारण हमने ही सहे। और यदि हम अब भी अपने विवेक में न लगे तो फिर ये दुख सहन करने पड़ेंगे। विवेक ने अभी तो भेद ज्ञान, अपना स्वरूप पहचानना है, और हित की बात जानेंगे, करेंगे, तो भी हमें ही आनंद होगा। कोई उसमें क्या कर देगा? हित में लगना भी हमारे लगने से ही होगा। तब मैं ही तो स्वयं का गुरु हुआ। यदि अन्य गुरु है भी तो सूर्य की तरह। अतः पहले उदाहरण दिया ना उन्होंने, सूर्य तो प्रकाश कर देता है, मार्ग तो हमें आचरण करना है। अतः गुरुजनों ने जो हित का उपदेश किया, अब मैं उस पर श्रद्धा कर चल सकूं तो चल लूं। अन्य उसमें कोई क्या कर देगा? जो कुछ करूंगा मैं स्वयं ही करूंगा। इष्ट वियोग, ये इष्ट वियोग समझते हैं शोभा बेन? नहीं समझते। बोला नहीं, नहीं। इष्ट वियोग का अर्थ क्या है? इष्ट वियोग गज, वो अर्थ ज्ञान का नहीं। इष्ट वियोग से उत्पन्न हुआ ऐसा वो जो दुख रूप परिणाम है, बारंबार उसका चिंतन, उसको अर्थ ध्यान कहेंगे। इष्ट वियोग इतने का अर्थ क्या है? हाँ, यानी हमें जो अच्छी लगती है चीजें वो हमसे दूर हो जाना, इष्ट है ना अच्छे लगने, अनिष्ट है ना बुरे लगने। इष्ट वियोग यानी हमारे कोई रिलेटिव है उनका वियोग हुआ, धन का वियोग हुआ, हम कोई संयोग अच्छे लगते थे उनका वियोग हुआ, वो क्या है? इष्ट वियोग।
किसी ने शादी में कोई अपने पत्नी को घड़ी दी या लॉकेट दिया और लॉकेट या घड़ी गुम हो गई,
इष्ट वियोग,
तो इष्ट का वियोग हुआ, बहुत दुख होता है।
यानी हम दुखी क्यों होते हैं? इष्ट का वियोग होता है या अनिष्ट हमें आ पड़ता है, है ना? हम जो नहीं चाहते वो चीज आ पड़ी वो तो हमें दुखी है। हम मेहमान को नहीं चाहते और घर में वो तो जाने का नाम ही ले रहे, तो क्या हो रहा है?
अनिष्ट संयोग।
अनिष्ट संयोग। तो इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग होने के कारण, अभी अनिष्ट संयोग, अभी बहुत ठंडी हवा चल रही है, अनिष्ट संयोग हो रहा है, उसमें बारिश गिर रही है, हम नहीं चाहते और वो अनिष्ट संयोग है। और किसान जो है उसके लिए तो खेती के लिए आवश्यक है, वो तो चाहता है, उसके लिए वो इष्ट है। तो इष्ट वियोग या अनिष्ट संयोग होने के कारण जब यह प्राणी बहुत दुखी हो जाता है तो पड़ोसी आकर बहुत समझाते हैं, किंतु वह चुप नहीं होगा क्योंकि दूसरा उसमें परिणमन तो नहीं कर देता। अतः चेतन से अतिरिक्त मेरा कुछ नहीं, इन्हें लौकिक बात कहते हैं। कोई बच्चा भी रोता है या कोई किसी का वियोग भी होगा घर में तो अन्य लोग आके समझाते हैं, परंतु वो तो यदि रोना बंद भी होगा तो उसके अपने से होगा, कोई दूसरे आकर उसको कुछ नहीं कर सकते। जिस शरीर की रग रग में हम समाये हुए हैं, क्या कहा? हम शरीर के संयोग में हम है, जब वही मुझसे भिन्न है, वही मेरे स्वरूप से अलग है, तब बाह्य पदार्थों में कैसे कहा जावे कि ये मेरे है? यानी जिसके साथ अभी हमारा, जिसको हम कहेंगे एक क्षेत्र में रह रहे हम, ये रग रग में समाये है ना, क्योंकि जितने हमारे आत्म प्रदेश है उसमें शरीर के डिपॉजिट हुआ है, हम कहेंगे उसके परमाणु आके स्कंद रूप बने हैं। तो कहते वही जो मेरे से भिन्न है तो अन्य पदार्थों की क्या कहें? चेतन को छोड़कर अन्य मेरा कुछ नहीं। जो ज्ञानी जन ऐसा मानते हैं वे अपने आप में प्रकाश पाते हैं, पुष्ट होते हैं। हम तो समस्त पदार्थों के साथी नहीं है, उन पदार्थों से भिन्न है, सो उन्हें अंगीकार न करे। गवाह उसे कहते हैं जो जैसी बात हो उसको उसी रूप में कह देवे। गवाह घटना का होता है, हमारा तुम्हारा नहीं। क्या कहना चाहते? गवाह ने साक्षी, यहाँ पर भी कहते हम तो साक्षी है ना, हम तो ज्ञाता दृष्टा है, वो किसी का नहीं है, वो तो घटना का वो गवाह है, वो घटना का वो गवाह है, घटना का वो साक्षी है, वो किसी पार्टी का नहीं है। यह पदार्थ ऐसा है, इसका परिणमन भी ऐसा ही है, बस यह जानता रहे। ज्ञाता तो रहे किंतु यह विचारे कि मेरे चैतन्य भावों छोड़कर, भावों को छोड़कर, को पहले को चाहिए वहां, मेरे चैतन्य भावों को छोड़कर मेरा जगत में अन्य कोई नहीं। यानी देखो बाह्य पदार्थों का परिणमन तो इसके ज्ञान में आएगा, ज्ञान यानी जानते हुए भी उसको ये समझना है कि मैं तो चैतन्य मात्र हूँ, चैतन्य ही मेरा है, कहने से उन्होंने उसमें भेद डालकर मेरा है कह दिया, अन्य कुछ मेरा नहीं है। अतः बाह्य पदार्थों की उपेक्षा कर अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप सुखी हूँ। यानी जो कुछ करना है तो अपने में ही होना है, अपने से ही होना है, कोई दूसरा आकर करा दे ये तो बात तीन काल में नहीं हो सकती। सत्य जो है उसे मान लो, उसी की उपासना करो। ये उपासना वाली बात भी आई थी ना इसमें, आत्मभावना में, आत्मा ही उपास्य है, उपास्य नहीं जिसकी उपासना करनी है, तो हमें उपासना है ने पूजा करनी है, आराधना करनी है। किसकी करेंगे? पार्श्वनाथ की कि महावीर की? हाँ बोलोगे?
जो हमारा कल्याण
तो कहते आत्मा ही आत्मा के लिए उपासना करने योग्य है, उसकी उपासना के लिए कुछ आरती नहीं अपनी, नहीं तो कल से आरती है कैसे तो कहते अपने में स्थिर हो जाना है, अपना स्वरूप पहचान कर, यानी उसी की, यानी सत्य जो है उसे मान लो, उसी की उपासना करो। प्रत्येक पदार्थ का अपना अपना जैसा सहज स्वभाव है वही सत्य है। जिस मकान में रहते हैं क्या यह सत्य है कि वह अपना है? कहते नहीं, यह असत्य है। सत्य होता तो सदा रहता, यह सब असत्य है। शरीर तक तो असत्य, असत्य ने है ही नहीं, वो बात नहीं है, उस रूप में नहीं है,
परमानेंट रहने वाला,
हाँ परमानेंट नहीं है। कर्मोदय से यानी कर्म के उदय से मोह में ऐसा भाव बन जाता, वास्तव में ऐसा है नहीं। यानी मोह के कारण हम मानते ये मेरा है, ये कायम रहने वाला है, मैं इस रूप हूँ, वास्तविकता है ही नहीं है। क्रोधादिक भाव वास्तविक है ही नहीं, मेरा तो चैतन्य को छोड़कर अन्य कुछ नहीं, क्रोधादिक भाव सब नाशवान है। हम हमेशा देखते ना, जो कुछ छोड़ के चला जाए वो मेरा नहीं, क्रोध क्रोधादि भी आते जाते हैं तो अपने है ही नहीं है। अभी किसने आपको उत्तर दिया था, वो वहाँ आपकी क्लास में किसी ने कहा था ना, कषाय वो आते आते जाते ऐसा कुछ बातें हुई थी, मुझे याद नहीं आ रही अभी, वो महिला ने कुछ ऐसा बोला था।
कषाय,
हाँ कषाय क्या है,
आते जाते हैं
वो तो आते जाते हैं। क्रोधादिक भाव सब नाशवान है, नाशवान है नहीं तो पर्याय है, पलटते रहते हैं। अंतरंग के दर्शन हो जाने से वे सब नष्ट हो जाएंगे क्षण भर में। एक पुरुष बहुत व्यसनी था, उसकी स्त्री बहुत भली थी, उसने दुर्व्यसनों का त्याग करने के लिए बहुत समझाया किंतु वह न माना। एक दिन उसकी स्त्री ने उसे एक बटरिया दी और कहा कि यह हम सबके देवता है। बटरिया क्या होती है, ठीक है जो कुछ होगा, तुम एक बात मानो, इसकी पूजा कर लिया करो और 24 घंटों के लिए ऐब छोड़ दिया करो। उसके पति ने स्वीकार कर लिया, प्रतिदिन चावल चढ़ावे, घंटा बजावे, नमस्कार करे और 24 घंटों को पाप छोड़ देवे। इस प्रकार जब कुछ दिन बीत गए तो एक दिन उसने देखा कि बटरिया के ऊपर चढ़कर चूहा चावल खा रहा है।
बटरिया वाटी,
वाटी बटरिया, अच्छा। उसने सोचा कि इस बटरिया की पूजा करना बेकार है, क्योंकि इससे बड़ा तो यह चूहा ही है। अब वह प्रतिदिन चूहे पर चावल चढ़ावे, घंटी बजावे, नमस्कार करे और 24 घंटों का पाप छोड़ दोवे। कुछ दिन बाद उसके ऊपर बिल्ली झपटी, उसने सोचा कि इससे बड़ी तो बिल्ली है, अतः वह बिल्ली की पूजा करने लगा, प्रतिदिन चावल चढ़ावे, नमस्कार करे, घंटी बजावे और 24 घंटों के लिए पाप त्याग देवे। कुछ दिन बाद उस पर कुत्ता झपटा, अब वह कुत्ते पर देवता के भाव रख उसे पूजने लगा और सब कार्य उसी प्रकार किए। एक बार वह कुत्ता रसोई में घुस गया, औरत ने उसके डंडे से मार दिया। उसने सोचा कि इससे
बड़ा क्या है, देखो देखो, कुत्ता पालना जैनियों के लिए योग्य नहीं है। जो रसोई में आवे तो पूरी रसोई जिसको कहते हैं अयोग्य हो जाती,
अभक्ष हो जाती, मांसाहारी नहीं। औरत ने उसके डंडे से मार दी, उसको डंडे से मार दिया। उसने सोचा कि इससे बड़ी तो मेरी औरत ही है, मैं व्यर्थ ही भटक रहा हूँ, अतः वह औरत की ही पूजा करने लगा। प्रतिदिन चावल चढ़ावे, घंटी बजावे, नमस्कार करे और 24 घंटे के लिए पाप छोड़ देवे। जब कुछ दिन इस प्रकार बीत गए तो एक दिन वह खाना खा रहा था, नमक अधिक हो गया था खाने में, अतः वह अपनी पत्नी से बोला, आज नमक कैसे अधिक हो गया? औरत भी पूजा के कारण अब बढ़ गई थी, अब उत्तर भी जोर शोर से ही दिया, हाथी तो है अंदाज में अधिक डर गया होगा, उससे यह सहन न हुआ और अपनी औरत को पीट लिया। फिर उसने सोचा कि यह तो मैं ही बड़ा हूँ, बेकार मैं आज तक इन सबकी पूजा करता रहा। तात्पर्य यह उसको छोड़ इसके ग्रहण कर, इस प्रकार करते करते स्वयं पर आ गया। अतः सब लघु है तुम्हारे लिए, तुम्हें महान हो, अन्य कोई महान नहीं, अतः परदृष्टि छोड़कर मैं अपनी आत्मा में रम कर अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप सुखी हूँ। 13 नंबर। निर्वित्तश्चेतनावित्तो निष्कलश्चेतना कल चेतनान्यन्यमे किंचित् स्यां स्वस्मै स्वे सुखी स्वयं। निर्वित्त, वित्त यानी संपत्ति, मैं धन रहित हूँ और चेतना ही है धन जिसका ऐसा हूँ। चेतना वित्तो, पहले घर पर लगाया, फिर उसने मित्र पर लगाया कि मैं निर्वित्र हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। निष्कल यानी शरीर रहित हूँ, वो चेतना ही है शरीर जिसका ऐसा हूँ। आपने ये सुना होगा ना, मैं ज्ञान शरीरी हूँ, ज्ञान ही मेरा शरीर है। या सिद्ध भगवान को भी कहते ना, ज्ञान शरीरी है, ये जो जड़ शरीर वो उनके नहीं है। यहाँ तो कहते हैं शरीर के रहते हुए भी मैं शरीर से रहित हूँ, क्योंकि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूँ, मेरा चेतना से अन्य कोई भी पदार्थ नहीं है। अतः जानता देखता हुआ मात्र ही मैं अपने में, अपने लिए, अपने आप सुखी हूँ। मैं धन रहित हूँ, वित्त रहित हूँ। धन का दम लोक में अधिक माना जाता है, प्राण, दम, शक्ति जैसे अर्थ में वित्त का प्रयोग होता है। क्या कहते हैं, धन के लिए कहते ये मेरा प्राण है, तो धन गया तो मेरा दम भी चला गया उसमें से, शक्ति है हमारी। कुछ पढ़े लिखे तो धन को 11वां प्राण कहते हैं, 10 प्राण तो सुने होंगे ना, तो धन हमारा 11वां प्राण है। वैसे 10 प्राण ही होते हैं, किंतु धन को भी प्राण माना गया है। बताइए कितना मोह है इस धन के प्रति प्राणी को। दुनियादारी में, व्यवहार में आज धन का बहुत बड़ा महत्व है, उस जमाने में भी इतना नहीं होगा, इतना आज बढ़ गया क्यों? उन्होंने लिखा होगा कुछ साल पहले, किंतु दूसरी दृष्टि से यदि सोचोगे तो पाओगे कि यही पाप का पक्का कारण भी बनता है। अतः वास्तव में तो चेतना ही धन है। चेतना है धन जिसका ऐसा मैं हूँ, उसको विशेषण बनाए, चेतना वित्त, यानी मैं चेतना वित्त हूँ, यानी चेतना ही जिसका धन है ऐसा मैं हूँ। मैं शरीर रहित हूँ, न मैं वित्त रूप हूँ, न शरीर रूप। वित्त तो प्रकट ही अचेतन वस्तु है, क्योंकि ये तो सामने दिख रही है ना, ये नाना कहो उसके या नोट है, वो तो अपने से प्रत्यक्ष भिन्न है और वो तो पुद्गलिक है, तो प्रत्यक्ष दिख रहे कि अचेतन है। शरीर से चेतना का संबंध भले ही हो, किंतु वह भी अचेतन ही है। मेरा धन, शक्ति, बल सब कुछ चेतना ही है, इससे अन्य कुछ नहीं। मेरा धन क्या है? मेरा चैतन्य मेरा धन है, मेरे चैतन्य मेरी शक्ति है, वही मेरा बल है। हम तो शारीरिक बल को अपना बल समझते हैं, और ये धन संपत्ति जो बाह्य वो मेरी इतनी धन संपत्ति, इतने करोड़ों के, इतने अब्जों के, जो कुछ है, है? अतः मैं शरीर रहित हूँ, कल रहित हूँ, कल कल रहित हूँ, बताए कल कल
खिटपिट,
हाँ
आवाज होता है ना, कल
कल, 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 कल आवाज होता है। झगड़ा रहित हूँ, उपद्रव रहित हूँ। कल कहते हैं शरीर को, जैसे कहते कि क्या कलकल लगा रखी है, अर्थात क्या शरीर शरीर लगा रखा है। हाँ, कलकल, यह सब जो नृत्य हो रहा है सब कलकल का ही तो है। अतः मैं कलकल रहित हूँ। यदि मेरा कल है ही तो वह चेतना है। मेरा स्वरूप सिद्धों के समान है, वे शरीर रहित है, अतः मैं भी शरीर रहित हूँ। निज तत्व पर दृष्टि दी जावे, क्योंकि अस्थिकाय आदि में भी काय शब्द आया है, तो मेरा शरीर ज्ञान है। काय ने बहुप्रदेशित्व को काय कहते हैं, मेरा सर्वस्व ही ज्ञान है, चेतना मेरा लक्षण है। और यदि अन्य अन्य प्रकार से अपने ऊपर दृष्टि दो कि मैं कितना लंबा चौड़ा हूँ, तो ऐसी दृष्टि करने से आत्मानुभव नहीं हो सकता। क्या कहते हैं, मैं इतने वेट वाला हूँ, मैं इतने हाइट वाला हूँ, ये तो शरीर की बात होती है, ये आत्मा का लक्षण नहीं है। क्या क्रोधी मानी का परिणाम देखकर आत्मा का लक्षण समझा जा सकता है? नहीं। यानी कोई कहता है मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं बहुत माया यानी दयालु हूँ, तो फिर ये भी उसका लक्षण नहीं है, राग उसका लक्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता राग लक्षण? राग को जीव का लक्षण क्यों नहीं कहना? और राग तो जीव में ही होता है ना। किसने कहा? वो किसका परिणाम है, पुद्गल का के जीव का? परिणाम जीव का, तो उसको जीव का लक्षण क्यों नहीं? हाँ, वो भी भाव भाव है, निकल जाता है, वो कायम रहता नहीं है। एक तो अंतर्मूर्त में पलटता है एक बात, और दूसरी सिद्धों में नहीं रहता है। यदि वो जीव का होता तो जीव से जुदा कभी नहीं होता।
देखो, हम सोचते हैं कि राग है, क्या वो द्रव्य है, गुण है, यही परमानेंट रहने वाले अनादि अनंत द्रव्य और गुण, लेकिन ये क्या है, पर्याय है, वह भी विभाव पर्याय है, इसलिए मेरा नहीं है, इसलिए उसको तुम्हारा आई मीन पुद्गल का कह दिया।
राग रहित भी जीव है। तो लक्षण तो ऐसा होना चाहिए
जो सब में
ये सब तीन दोषों से रहित होना चाहिए। हाँ, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो कहते वह आत्मा का लक्षण नहीं समझा जा सकता। भैया, आत्मा का लक्षण तो चैतन्य स्वरूप है, चेतना। अतः आत्मा का शरीर है तो ज्ञान है, ज्ञान से ही आत्मा की समझ पड़ती है, और ज्ञान रूप में ही आत्मा को समझा जावे तो समझ में आ जावे। अतः जो सिद्ध है वही मैं हूँ। ये कहना क्या चाहते हैं, ज्ञान अपना प्रकट लक्षण है, आत्मा में अनंत गुण है, वो रागादि भले जीव में हो रहे हैं, परंतु ऐसा कोई गुण नहीं है जो राग रूप परिणमन करा। वो गुण का विभाव रूप भाव जरूर है, परंतु राग करने वाला कोई गुण नहीं है। जैसे ज्ञान वाला गुण है, जीव का लक्षण है, और वो प्रकट लक्षण है, यानी सबके समझ में आवे कि वो समझ रहे हैं, ये मुझे ज्ञान जानने में आ रहा है या मैं इसको समझ सकता हूँ या नहीं समझ सकता हूँ, इसका वो स्वयं निर्णय करता है। तो ये उसका प्रकट लक्षण है, हर जीव का ये प्रकट लक्षण है, इसलिए उसके लक्षण, उस लक्षण के द्वारा अपने को समझना है, अपना ज्ञान करना है। वास्तविकता यही है, मनुष्य कषाय बिना आत्मानुभव का पात्र हो सकता है? सम्यक दृष्टि ही क्यों न हो, वह भी तीव्र कषाय के रहने से आत्मानुभव का पात्र नहीं हो सकता। आत्मानुभव ने शुद्धोपयोग रूप यहाँ लिया होगा शायद। यदि विपदा कुछ है, इस कषाय की ही विपदा है, मेरा तो चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आज संसार में शरीर व धन दोनों का ही बहुत बड़ा महत्व है। बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं, चाहे कितना ही धन हो पास में, दान करने के भाव भी हो, किंतु अपने हाथ से खर्च नहीं कर सकते। स्वयं मुंह से भी स्पष्ट कह देते हैं कि मुझसे खर्च नहीं हो सकता। प्रकृति कुछ ऐसी है, भले ही लड़के से दिला देगा, किंतु अपने हाथ से नहीं दे सकता। कुछ ऐसी वासना हो जाती है, ये नहीं दिया जा सकता। यह हुई धन की तृष्णा, लालसा, और शरीर की तृष्णा है, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा आकार ऐसा है, आदि संस्कार बनाए रखना। जैसे धन के लोभ में अपने हाथ से लाभ नहीं होता, उसी प्रकार शरीर रहते हुए भी शरीर का कार्य नहीं किया जा सकता। ये दोनों ही मोह प्रबल है। अतः मेरा स्वरूप न तो धन है और न शरीर है, मेरा सब कुछ चेतना ही है। जिसे आत्मदृष्टि है उसका भाव होता है कि सब धनादि मैं परोपकार में ही लगा दूंगा, यह मन भी विनाशिक है। अतः यही सोचे कि सब जीव सुखी होवे, अन्यथा दूसरों के प्रति बुरे भाव रखने से अगले भव में मन रहित जन्म होगा।
अच्छा?
असंगी हो जाएगा। यानी वो तो
जनरल स्टेटमेंट
है। वचन रहित जन्म लेना होगा, एक इंद्रिय में जाएगा। यदि इस तन का दुरुपयोग किया, परोपकार में न लगाया, तो निश्चय ही पृथ्वी वृक्षादि अगले भव में बनना पड़ेगा। किंतु
मन रहित में आए नहीं सब?
हाँ, सब आ गए, ये वचन रहित भी हो गए ना। किंतु ज्ञानी जन यही सोचते हैं, मेरा तन मन धन लगकर जनता प्रसन्न हो तो मैं ये सब उनकी सेवा में लगा दूं, ये तो नष्ट होने वाले हैं। अतः जितना भी तन मन धन से दूसरों का भला हो उनकी सेवा में लगा दूं, सॉरी भला हो सके करना चाहिए। मैं ऊपर की लाइन में फिर गई। और यदि कहो भला हो सके करना चाहिए, और यदि कहो कि मोह वालों में लगा रहे हैं तो उससे क्या लाभ। अरे सबको समान देखो और सबके प्रति अच्छी भावनाएं सोचो। परोपकार करने के लिए, दूसरों का दुख तन मन धन वचन से दूर करने के लिए तत्पर रहो। ऐसा न हो कि कहीं इनको दुरुपयोग करने से अगले भव में इनसे रहित अवस्था को प्राप्त हो। और रही अपनों में उपकार करने की बात, वह तो तुम उनके मोहवश स्वयं बिना किसी के समझाए भी करोगे ही। क्या कहते हैं कि अपनों के लिए तो करने दो, क्योंकि तो कर ही रहे ना मोहवश। ज्ञान तो जब है सबकी, जबकि सबको एक दृष्टि से देखते हुए तन मन धन वचन से जहां तक हो सके दूसरों की सेवा करो। एक पंडित को परोपकार के लिए कुछ रुपया जीव दया के लिए एक बड़े फंड के रूप में दिया गया कि परोपकार में लगा दो। बाद में जब हिसाब पूछा गया तो बोले कि मैंने परोपकार में खर्च कर दिया है, अपने घर वालों पर जो रुपया इसमें से खर्च किया वह भी तो परोपकार ही है। सोचो भैया, क्या वह परोपकार में शामिल है? नहीं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि घूमने के समय पर भी ऐसे सज्जनों से वास्ता पड़ता रहता है, भले ही उनके लिए आप या अन्य कोई परिचित नहीं, फिर भी नम्रवाणी से बातचीत करेंगे। जहां अवसर होगा परोपकार किए बिना चूकेंगे नहीं। उत्तम सद्बुद्धि रखने से अध्यात्म मार्ग पर चलने का पात्र बनो। ये तो लौकिक सज्जनता की बात बता रहे, पात्रता की बात बता रहे। अतः मेरा तो इस संसार में चेतना को छोड़कर अन्य कुछ नहीं। तब मैं अन्यपने की दृष्टि न लगाकर, अर्थात अन्य में उपयोग न लगाकर, अपने में, अपने लिए, अपने द्वारा, अपने आप सुखी हूँ। इसको छोड़कर दुनिया में सुख का अन्य कोई उपाय नहीं। दुनिया में जो लेन देन की प्रथा है उसमें देने वाले को साहू कहते हैं। तो वह कोई भी जब रुपया नहीं लेने आता है तो उनकी इस प्रकार की कहावत हो गई है कि साहू जी ठीक ठीक बता दे आप देंगे या नहीं, क्योंकि हाका मरे और नाका जीवे। अर्थात आपने हमारे मांगने पर हाँ कर दिया और समय पर न दिया तो हम बेमौत मारे जावेंगे, और यदि स्पष्ट में देने से इनकार किया तो कम से कम अपना अन्य उपाय तो कर ले देंगे, भरोसे तो न रहेंगे। अने आप हाँ कह दिया, हाँ का मरे, हाँ तो कह दिया परंतु ऐसा नहीं दिया तो मर गए, और डायरेक्ट ना कह दिया तो दूसरा कुछ उपाय तो सोच सकते हैं ना। हाँ, आज भी चल रही क्या? इसी प्रकार दुनिया के पदार्थों में करोगे कि हाँ यह भी अच्छा, इसमें भी अच्छा, यदि तब तो समझो कि मरे। और यदि इस प्रकार सोचोगे नहीं, पुत्र में भी सुख नहीं, पत्नी में भी आनंद नहीं, दुनिया के किसी पदार्थ में भी आनंद नहीं, आनंद है तो केवल अपने चेतना स्वभाव में, जो समझा वह अमर हो गया। यानी कहीं ना कहीं सुख बुद्धि पड़ी रहती है तो चेतना का विचार भी नहीं सूझता है उसके। आत्मबल ही एक ऐसा बल है जो कशी हुई अर्थात कषाय की स्थिति में भी अनाकुलता का ज्ञान करा सकता है, करा देता है। अंतर ज्ञान से उठी हुई अंतः परिणति पूर्ण होती है। अंतर ज्ञान से उठी हुई अंतर परिणति पूर्ण होती है। जिनके अंतर मन में श्रद्धा है वे बाहर भी वैसे ही दिखाई देते हैं, किंतु मिथ्यात्व के कारण ही आज धर्म पर आक्षेप आता है, क्योंकि धर्म का स्वरूप ही नहीं समझ रहे ना जी। धर्म तो सदा सुख का ही हेतु है। धर्म की ओट में जो अधर्म चलता है उससे लोग धर्म पर आक्षेप करते हैं, बोलते ना उसकी आड़ लेकर जो कुछ अधर्म चल रहा है धर्म के नाम पर, मायाचारी चलती है, बाहर कुछ और अंदर कुछ और, इसलिए लोग धर्म पर आक्षेप लेते। धर्म तो धर्म ही है। जैसे कि एक किसान के 3 बैल थे, 2 को तो वह जोतता था, 1 बैल बंधा रहता था। जहां वह बंधता था उसके ऊपर एक अलमारी थी जिसमें वह किसान अपना खाना रखता था। 1 बंदर प्रतिदिन आता, अलमारी खोलता, खाना खाता और जूठन आदि बैल के मुंह पर मल जाता था। किसान की दृष्टि बैल पर ही रहे कि इसी ने खाना खाया, यही मेरा सब खाना खा जाता है, तो वो खूब उसको पीटे। 10-15 दिन जब इसी प्रकार बीत गए तो पड़ोसन ने उस किसान को समझाया, भाई इसे क्यों पीटता है, यह किस प्रकार अलमारी खोल सकता है, अलमारी तो इसे ऊपर है। किंतु वह किसान बोला, मैं यह सब नहीं जानता, मुंह तो इसी का पुता हुआ है, फिर संदेह कैसा। उनके काफी समझाने पर छुपकर देखने के लिए वह तैयार हो गया। प्रतिदिन की तरह वह बंदर आया, उसने अलमारी खोली, खाना खाया और झूठन बैल के मुंह पर पोत दी। उसी प्रकार वृषभ तो हुआ धर्म और बंदर हुआ पाप। सो भैया, खोटी करतूत तो पाप करता है, अपयश धर्म का होता है। कितना ही बड़ी से बड़ी विपत्ति क्यों न हो, कितनी ही चाहिए ना। ज्ञानी तो यह विचारता है कि मैं तो चैतन्य स्वरूप हूं, फिर कहाँ है विपत्ति, कहाँ है दुख। इस विचार के बाद विपत्तियां दूर हो जाती है। ज्ञानी संपदा विपदा सुख दुख को, सुख ही नहीं बाह्य सुख की बात, हर्ष विषाद की बात है, एक ही दृष्टि से देखता है। मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, सो अपने चैतन्य स्वभाव को पहचान कर अपने में, अपने लिए, अपने आप, अपने द्वारा सुखी हूँ। यह बात केवल शुद्ध निज चैतन्य स्वरूप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हो सकती है। दृश्य ने मैं कौन हूँ ये किसमें स्थापित करना है, तो निज चैतन्य स्वरूप में, और वो कैसा, शुद्ध। शुद्ध क्यों कहा, ये अभेद अखंड की बात कह रहे हैं। ये तो दर्शन है। इसलिए हम लोग अन्य सब बातों की असारता का निर्णय कर अब अपनी ओर आए। भैया, यदि तुम इसका निर्णय करना चाहते हो तो यह तो निश्चय है, ये धन मित्र पुत्र पत्नी आदि मेरी शांति के कारण नहीं है। इतना ज्ञान दृढ़ता पूर्वक करके इन सब की उपेक्षा करो और यही सोचो, ये बाह्य पदार्थ मेरे ज्ञान में न आवे, मेरा ज्ञान निर्मल रहे। अभी केवल उनके जानने से अशुद्धता नहीं आती, अभी ये कलुषिका में चल रही है बात, परंतु ये उसके प्रति जो मोह है और बारंबार उनके रुचिपूर्वक उनको जानता रहता है, उसका यहाँ निषेध कर रहे हैं। अतः उसको निर्मल रखने के लिए अपने अंदर इन बाह्य पदार्थों में जब तक राग दृष्टि रहेगी, राग तक बात है ना, राग की बात है, तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यानी ये जो राग है ना उनके प्रति का, उससे भी अपने को भिन्न पहचानना है, अपने को ज्ञान मात्र जानना है। क्योंकि राग तो एक मिनट में नष्ट तो नहीं होना है, राग का भी लक्ष्य छोड़ेंगे तो जिनके प्रति राग हुआ है उसका भी लक्ष्य छूट ही जाएगा, इसलिए उनका लक्ष्य छोड़ा ऐसा भी कहने की पद्धति है। ये बात अपने अभी आत्मभावना में भी आई थी। तो जहां इनकी उपेक्षा की, इनके प्रति मोह न रखा, इनमें उपयोग न लगने दिया, तो अशांति कहीं रह ही नहीं सकती। अतः भैया, यानी बारंबार ये कहते हैं राग का और जिनके प्रति राग हो रहा है उनका, वो सन्मुखता छोड़कर अपने सन्मुख होना है, वही तो अबुद्धिपूर्वक में चला जाना है, जो कुछ होना है वो हो जाएगा। राग की बात, राग यानी राग द्वेष जो कोई परिणाम है उस सब की बात करने। अतः भैया, यदि सुखी होना चाहते हो, वास्तविक आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो इन बाह्य पदार्थों की बुद्धि न रखो। बुद्धि न रखो यानी उनसे सुख मिलता है, उनके कारण मैं सुखी हूँ, ऐसी जो मान्यता है वो नहीं रखनी है। ज्ञान के ये तो रहेगी वो, परंतु फिर भी बारंबार उपयोग अपने में लगाना है उनसे हटकर। संसारी जीवों में ये छंटनी मत करो, यह मेरा है यह पराया है। सब पर समान भाव, सब पर समान भाव रखो।
दोनों ही हो सकते हैं। सब पर समान भाव रखो,
हाँ,
सब पर समान भाव रखो। अपना कोई नहीं,
सबके प्रति यही भावना भावो कि सब जीव सुखी होवे। सबके प्रति क्षमा भाव रखो, यानी वो मेरे नहीं है, मेरे तो खैर उसके जो राग नहीं करना तो द्वेष करने लग जाता है, वो बात नहीं है। यानी उपेक्षा करना का अर्थ है कि मैं उनसे भिन्न हूँ और सबके प्रति भावना ये कि सब जीव सुखी होवे, सबके प्रति क्षमा भाव रखो। तन मन धन वचन से जितना परोपकार हो सके इनका उपयोग करो। अपने आश्रित व्यक्तियों में ही नहीं, जो अपरिचित है उनके प्रति भी मधुर वाणी बोलो, नम्रता से पेश आओ, उनके भले की ही सोचो। अपने परिश्रम करने से किसी को फायदा पहुंच जावे तो सामर्थ्य के अनुसार उसका उपकार करो। ये सब चरणानियों की हाँ भाषा है। आत्मा तो अमर है, शरीर से भैया तुमने कुछ परिश्रम भी कर, यदि दूसरे की सेवा शुश्रूषा कर भी दी तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? तुम तो शाश्वत हो, तुम तो चैतन्य हो ना, और इस शरीर से तुमने शरीर दूसरे की सेवा की मान लेते जिसको हम कह देते। धन देकर किसी की सहायता हो तो चूको मत, आगे भी इससे अधिक जिस प्रकार पूर्व भव के पुण्य कर्म से इस जन्म में प्राप्त किया जा सकता है, फिर भी इसकी चाह नहीं करो। ऐसा हो जाता है सो होने दो। हाँ, धन का दुरुपयोग करना बुरा है, या तो सदुपयोग करो या सब त्याग कर अपनी उपासना में लग जाओ। दुरुपयोग करने से इस लोक में भी विपदा है और भी दुर्गति ही है। यदि सत्य उपाय बन गया, देखो दुरुपयोग किसका, धन का,
नहीं मैं जरा उनको, आप उनको जरा
दुरुपयोग यानी खोटा उपयोग,
अपने लिए करे वो दुरुपयोग, माने वही दुरुपयोग।
नहीं नहीं नहीं, देखो धन का दुरुपयोग करना ये लौकिक, वो तो लौकिक बात कर ले।
और वही पैसा आप दान धर्म में लगाओ, अभी हॉस्पिटल खोलो, प्याऊ खोलो, खाना खिलाओ, जो कुछ है उसका सदुपयोग होगा। और उत्कृष्ट सदुपयोग तो देवगुरु शास्त्र के प्रति उसका उपयोग करो। यानी यहाँ दुरुपयोग करने से इस लोक में भी विपदा है और दुर्गति है,
यानी इस लोक में भी सब बुरा कहते हैं।
और आगे भी तुमको खोटा
व्यसनों में लगाया ना, ऐसा वही जो होता है तो कहते वो दुरुपयोग है। आपको कुछ अन्य पूछना था?
मैं ऐसा ही समझा कि अपने लिए वापरते हैं वो भी दुरुपयोग है। आप तो व्यसन में डायरेक्ट,
यहाँ तो लौकिक के नहीं सदाचार की बात है, यानी कहीं कहीं तो वो तो बहुत इन्हें सामने वाले कैसे हो गए सामने पता नहीं है, मगर कभी बहुत निश्चय की बात करते हैं और कभी जो हम लौकिक जो चरणानुयोग की बात है उपदेश की उसकी मुख्यता से भी बहुत सी बातें बताते हैं कि लौकिक में कैसा बिहेव करना।
वो हम अमेरिका में जाते रहे तो कौन सा गांव है मुझे मालूम नहीं, वहाँ हम गए थे, हमको बड़ा वो क्या कैसलिनो कुछ होता है कैसिनो वो देखा कि नहीं हमने, हमने कहा नहीं रे भैया हम कहाँ जाएंगे उधर, वो कहाँ गए थे उसे
सैन डिएगो
में। क्या क्या
अपने लिए दुरुपयोग,
यार उनका यही कहना है घड़ी घड़ी के तुम्हारे पास जो धन है वो अपने लिए वापरते हो तो वो तो कष्ट का ही कारण है। आगे एक दफा बताया उन्होंने और उन्होंने बोला कि यही धन तुम अपने लिए नहीं वापरो दूसरे के लिए वापरो, दूसरे के लिए नहीं वापरो और अपने में आ जाओ तो और अच्छा है।
अभी बता ना, सदुपयोग करो या सब त्याग कर अपनी उपासना में लग जाओ एक बार, और यानी अपना धन अपने लिए वापरो ही नहीं, ऐसा नहीं जो तुम्हारी जो आवश्यकता है और इस फिर भी धन है आपके पास तो कहते तो सदा इसमें दया में दान में आदि लगा लो, इस लौकिक बात है ये।
देखो यहाँ पर जिसको हम कहते हैं कंपैरेटिव बात है, अभी हमने ऐसे भी पंडित देखे हैं, अभी नाम तो आप कोई बताओ मुझे याद नहीं है कि वो दिन सुबह दुकान खोलते एक रुपये का फायदा हो गया तो दुकान बंद करते थे।
वो तो भागचंद जी थे ना, आगरा में थे वो। हाँ
नहीं नहीं वो फिर बैठते ही नहीं थे दुकान में, जाके मंदिर में अपना अपना जो कुछ कार्य करना है जो वो करते थे, और उनके साथ हम भी धंधा कर रहे हैं, हमको 12 घंटे कम पड़ते हैं, ये समझ गए ना, वो अपेक्षित बात है कंपैरेटिवली। तो इसमें स्व के लिए वापरना क्या नहीं वापरना की बात ही नहीं है, बुरे काम में नहीं लेना, दुरुपयोग यानी हम किसी को पैसा देके किसी का मतलब खात्मा कर देवे ये दुरुपयोग हो गया,
व्यसनों में लगा देना है ये दुरुपयोग है, ये जो जो, जो आवश्यकता नहीं है ऐसे में वो तो उसी में परिग्रह बढ़ाने में या कोई चीजें बढ़ाने में दुरुपयोग है।
चल
यानी हम ये तो विवेक से बात इसको सोच सकते हैं, यानी जैसे हम धन को छू ही नहीं सकते वो अपने अपना आता ही नहीं, वो द्रव्यानुयोग का सिद्धांत अलग है, वो सिद्धांत है और वो समझकर निर्णय करने के लिए है, और यहाँ तो जो बात है लौकिक सदाचार की बात बता रहे हैं, लौकिक में लोगों को कैसा होना चाहिए यानी कैसे चाहिए वाली बात आती है तो ये उपदेश की बात है, क्योंकि एक ही ग्रंथ में अनेक अनुयोग की बातें आती है।
यहाँ पर भी आप जो बता रहे हैं वह द्रव्यानुयोग का सिद्धांत भी
बताते हैं।
देखो ना धन पहली लाइन में धन का दुरुपयोग करना बुरा है, ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गई, या तो सदुपयोग करो ये उपदेश की बात है, या सब त्याग कर अपनी उपासना में लग जाओ
ये तो करने जैसा तो वही है।
फिर आप मुझे बोलो मैं धन का त्याग भी नहीं कर सकता हूँ, अरे पर ग्रहण तो किया ना भैया कमाया भी
मैंने पहले ये भी बताया ना, वो तो पूर्व पुण्य से तो मिला, कहीं कहीं तो दान की जहाँ मुख्यता से बताते हैं ना कभी चरणानियों के ग्रंथों में, तो पूर्व का जो पुण्य है उतना तो धन रहने वाला है, आप खर्चा करो या नहीं करो दान देंगे तो उतना रहने वाला है तो वो रहेगा ही, कैसे भी आएगा आपके पास। हाँ देखो ये 2 मिनट है अभी, तो दुरुपयोग करने से इस लोक में भी विपदा है, यानी वहां तो लोक में भी सब लोग उसको बुरा कहेंगे और भी दुर्गति ही है, यदि सत्य उपाय बन गया तो उससे परम शांति प्राप्त होगी, सत्य उपाय ने ये अपने में रहना वही सत्य उपाय, परम विश्राम होगा एवं अपने सहज स्वभाव दर्शन भी कभी हो जावेंगे, इसका आनंद सब सुखों की अपेक्षा विलक्षण होगा, यानी अपूर्व जिसको कहेंगे, आज तक ऐसे आनंद का अनुभव नहीं किया है ऐसे वही सच्चा सुख है, तब वह उस स्थिति को छोड़ना नहीं चाहेगा, यानी वो जो अनुभव किया जो रसास्वादन कर रहा है उसको वो छोड़ना नहीं चाहेगा और यही सोचेगा मैं इसे किस प्रकार बनाए रखूं। यह तो वही स्थिति है जिसे मैं आज तक खोजता रहा, जिसके दर्शन न कर नाना गतियों में घूमता रहा, किंतु अब मैं अपने उद्देश्य को पा गया हूँ, इसी में मेरा कल्याण है। ऐसा करने पर पाप स्वयं ही छूट जावेंगे और पापों के छूटने का नाम ही तो धर्म है। अतः भैया अपने आप को पहचानो, फिर कोई सता नहीं सकता। समझ लो फिर बेड़ा पार हो गया। अपने आचरणों को ठीक रखने से ही मुक्ति के मार्ग पर जीव लग सकता है। अतः व्यसनों का त्याग कर अपने आत्मा के स्वयं सिद्ध ज्ञान स्वरूप का ध्यान कर। स्वयं सिद्ध ने किसी ने बनाया नहीं, वो तो है अनादि का ही है। तो आत्मा स्वयं सिद्ध है, उसका ज्ञान स्वभाव तो अनादि से है, उसी का ध्यान कर अपने कल्याण में लगो। यही तो अपना धर्म है। यही रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकन सदा देत हो। मिली बात।
नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयज्ञानम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सपतावणम।